surgió me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आवंटन पर चर्चा। भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
जब दुनिया के नक्शे पर बारूद की लकीरें खींच रही हों, जब युद्ध सरहदों से कहीं ज्यादा तकनीक, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा हो, तब सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास कितने हथियार हैं, तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम भविष्य के लिए कितने और किस तरह तैयार हैं। मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के साथ। इस बार के बजट में 15.2% पिछले बार की तुलना में रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है, जीडीपी का लगभग 2%। संदेश पूरी तरह साफ है कि राष्ट्र अपनी रक्षा के साथ सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। क्या ये बढ़े हुए आंकड़े सिर्फ अंकगणितीय खेल हैं, या फिर ये बताता है भारत की बदलती हुई रणनीति, आत्मनिर्भरता की सोच, आधुनिकीकरण की पहल और भविष्य के युद्धों की तैयारी? इन विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत।
नमस्कार।
यहीं से शुरू करते हैं। 15.2% पिछली बार से बढ़ाया गया है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो अमेरिका, जर्मनी, रूस और कुछ और देश हैं, इसमें चीन को भी शामिल कर लें, जिनका रक्षा बजट भारत से अब भी ज्यादा है। भविष्य की तैयारी, चूंकि एआई पर युद्ध लड़ा जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से लड़ा जा रहा है, भविष्य की सोच इस रक्षा बजट में नजर आती है आपको?
जी हाँ, और उसी पे चर्चा करेंगे कि हथियार तो हैं, पर क्या हम भविष्य के लिए तैयार हैं? जैसे आपने कहा, तो पहले जो आवंटन के आंकड़े हैं उन पे भी थोड़ी नजर डालते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा, इस साल रक्षा खर्च का जो कुल आवंटन है वो है 7.8 लाख करोड़, $85 बिलियन। दूसरी जो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, जो सरकार का कुल खर्च है, सो एज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिफेंस इज 14.7%। सो अफोर्डेबिलिटी दिखाता है कि सरकार का इरादा क्या है, कि हम खर्च करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस बजट में जो आधुनिकीकरण और तकनीकीकरण पर जोर दिया गया है, सो 2.2 लाख करोड़, जो मेरे ख्याल से $25 बिलियन करीब है आपको आधुनिकीकरण करने के लिए। अब चुनौतियां क्या है कि आवंटन को हम प्रबल घातक क्षमताओं में तब्दील कैसे करें? मनी इज यूजलेस अनलेस इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्बैट कैपेसिटीज। 2014 से इस सरकार की कोशिश रही है कि हम रक्षा क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव लाएं, जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर। आपने जिक्र किया सीडीएस का, थिएटर कमांड, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, डिफेंस कमिंग आउट ऑफ द शैडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब जो गति है, या वो जो प्रणाली है, बदलाव की प्रणाली है, उसमें गति शक्ति किस तरह से लाई जाए। जो हमारा आज का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें गतिरोध बढ़े हैं, बाधाएं ज्यादा हैं और खर्च करने के साधन कम है। तो सरकार ने आपको दिए हैं ये पैसे 2.1 लाख करोड़, अगर आप वो गतिरोध नहीं हटाएंगे तो आप ये जो पैसा राशि मिला है इसको आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि वो जो गतिरोध हैं उनको किस तरह से हटाया जाए। और देखिए, पैसे की कमी नहीं है। अगर आप 2 लाख करोड़ आपने सितंबर तक खर्च कर दिया तो आपको अतिरिक्त आवंटन होगा, जिसे कहते हैं एडिशनल बजट। अब चुनौती ये है कि हम इसको खर्च कर पाए या ना कर पाए। तो मेरे समझ में ये जो संदर्भ है इसका मुकाबला किया जा सकता है। 2 सुझाव ऐसे हैं जो मूलभूत सुधार हैं, बेसिक रिफॉर्म्स। अगर आपने वो नहीं किए तो ये पैसे विवेकपूर्ण हम खर्च नहीं कर पाएंगे। और 5 कॉम्बैट इनिशिएटिव्स। देखिए, पैसे का क्या फायदा अगर उसको हम तब्दील ना कर पाए। तो इस साल टेक्नोलॉजी वगैरह की आपने बात की, वो कौन से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, so that we don't build an army that is prepared for the past but one that is focused on the future. भविष्य के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। और 2 ऐसे सुधार हैं जो समर्थक हैं, सो 2+5 पर 2। अब ये 2 क्या हैं? देखिए, जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उसका जो व्याकरण है, शब्दावली है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। अभी क्या है, पूरी चर्चा है प्रोसेसेस की, प्रतिक्रिया, उसको करना पड़ेगा उपलब्धि में। मतलब द मेजर शुड नॉट बी प्रोसेस बट लिथैलिटी, वॉर विनिंग आउटकम्स। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, क्वांटम, रोबोटिक्स, मिलिट्री ऑटोनॉमी, 3D प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, इनका जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना है। देखिए, जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप्स लॉन्च किए थे, उसका मतलब क्या है? स्टार्टअप सिंबलाइज इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं?
नवाचार।
नवाचार, और नवाचार का सबसे बड़ा दुश्मन है रेगुलेशन। रेगुलेशन को क्या कहते हैं?
नियमावली।
तो ये जो आज एमओडी वगैरह में, ये नवाचार और नियमावली के बीच गहरा संघर्ष है, और जीत किसकी होनी चाहिए? नवाचार की। तो ये एक चुनौती है।
लेफ्टिनेंट जनरल, आप आधुनिकता की बात कर रहे हैं, बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि पैसों की तो कमी नहीं है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की काफी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश अब ब्रह्मोस के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। जो विदेशी तकनीक है रक्षा के क्षेत्र में, हम बहुत समय तक रशिया पर डिपेंडेंट रहे, क्या लगता है कि आधुनिकीकरण की जब बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, क्या वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी बात होगी? और क्या दुनिया के वो देश जो टेक्नोलॉजी संपन्न है रक्षा क्षेत्र में, वहां पर बात बनेगी आपकी नजर से?
बिल्कुल। तो अब इसमें देखिए दो तीन चुनौतियां हैं। जो ये तकनीकीकरण की पूरी प्रणाली है, जैसे एआई, क्वांटम वगैरह, सेना को ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन हैं जो वैष्णव साहब ने शुरू किए हैं, सेमीकंडक्टर्स के, एआई, अभी एआई इंपैक्ट समिट होने वाला है, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, इसको कहते हैं दे लाई एट द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन। हमने क्या गलती कर रखी है कि वो सिविल के कार्यक्रम अलग है, हमारे अलग है, इनको जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप क्या खर्च करते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि अमेरिका 975 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है हर साल, 700 बिलियन डॉलर्स प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। हम तो 40 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं करते। मेरे ख्याल से इस बार उस पर भी जोर दिया गया है, डीआरडीओ को 30,000 करोड़। तो अभी ब्रह्मोस ही नहीं, मिसाइल्स बहुत और हैं, हाइपरसोनिक्स, ओरेशनिक्स, उन सारी मिसाइल्स को क्रिएट करके। देखिए, और बड़ी चुनौतियां, मिसाइल्स के लिए आपको मशीन टूल्स चाहिए, और जैसे मैंने कहा ना, वो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। वो सारी कैपेसिटीज हमारी लैब्स, हमारी आईटीज में होनी चाहिए, तभी हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे रक्षा क्षेत्र में। और दूसरा, जो हमारा ये विदेशी देशों पे जो निर्भरता है टेक्नोलॉजीज का, उसको कम करना पड़ेगा।
इस बजट में ये भी कहा गया कि जो पैसा बढ़ाया गया है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बहुत तत्काल गोला बारूद खरीदे गए, मिसाइलें खरीदी गई, उसकी भी भरपाई की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक सवाल ये है कि भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को दिखाया कि अब भारत किस तरह के युद्ध करने में सक्षम है। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद किया। क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का कितना बड़ा इम्पैक्ट अगर हम वैश्विक कूटनीतिक नजरिए से देखें तो पड़ा?
बिल्कुल। आप देखिए, मैंने 44 साल हो रहे हैं मेरे को फौज में, रावलपिंडी, रायविंड, बहावलपुर, ये तो हमने मैप पे ही मारा था, इस बार तो हमने कर दिखाया। 10 मई को जो हमने पाकिस्तान का हाल किया, I don't think in the recent past any country has been rendered so helpless, helpless. आप अपनी सीमाओं छोड़िए, आप अपनी जो हवाई सीमाएं हैं उन पे नियंत्रण खो बैठे थे। कहां थे आपके J-10s, J-17s 10 मई को? नूर खान को जब मारा, वो उनके GHQ से 1 किलोमीटर की दूरी थी। इट्स लाइक हिटिंग AIR आर्मी हेडक्वार्टर्स इज वॉट 500 meters। सो इट एक्सपोज द कम्प्लीट हेल्पलेसनेस ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द ग्रेट पावर ऑफ द इंडियन मिलिट्री। बट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता थी, बट उस सफलता को बुनियाद बनाकर हमें और मजबूत होना है। पाकिस्तान इज अ पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट। अब जो कमाल किया हमने सिंदूर में, बट उसको बुनियाद बना के वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटीज फर्दर। मैं आपको दो चीज और दूं, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके मैं आपको बड़े आंकड़े दे सकता हूं, बट लोग ये भूलते हैं एक लोई इंस्टीट्यूट है जो पावर रैंकिंग्स करता है, पावर शक्ति। उनके जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर रैंकिंग्स हैं, उसमें इंडिया इज ओनली बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। वी आर नाउ अ मेजर पावर। तो वी हैव टू बैलेंस आर इकोनॉमिक हेफ्ट विद आर स्ट्रेटेजिक माइट, और उन दोनों के कन्वर्जन से हम महान बनेंगे। व्हाट शुड बी आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स? हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड आइडिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बट स्वामी विवेकानंद ने हमें चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा था साहब, ये जो विश्व है अखाड़ा है, दिस वर्ल्ड इज अ जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्फ स्ट्रांग। तो आर्थिक क्षेत्र से प्रबल होना है और राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा क्षेत्र में भी शक्तिशाली बनना है। अगर हम ये दोनों करेंगे तभी हम विकसित भारत तो बनेंगे ही, पर सुरक्षित भारत भी बनेंगे। और अब हम बिग लीग में हैं, यूएसए चाइना, वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम।
आप सेना में 4 दशक से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, जब रक्षा बजट तैयार होता है या उस पर मंत्रणा चलती है अलग अलग सचिवों की, रक्षा विशेषज्ञों की, क्या परमाणु हथियार भी एक पहलू होता है जिस पर ध्यान दिया जाता है? जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ऐसा लग रहा है कि बढ़ती नजर आ रही है, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका जिन देशों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बीच क्या रक्षा बजट के बनाने के दौरान या उस पर सलाह मशवरे के दौरान परमाणु हथियारों को भी ध्यान में रखा जाता है?
परमाणु की जो हमारी शक्तियां हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वगैरह, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाता है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, एक्सक्लूसिव। तो जब रक्षा बजट की बात होती है तो उनका जिक्र नहीं होता, क्योंकि आपने सवाल उठाया। टुडे आई थिंक चीन के बारे में कहा जाता है इट्स अंडरगॉन अ न्यूक्लियर ब्रेकआउट। तो उन्होंने जैसे NFU को लॉन्च ऑन वार्निंग में तब्दील किया है, जो उनके साइलोज में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दे हैव अ सिस्टम विच टारगेट्स ग्वाम वगैरह, दे ऑल्सो हैव अ सिस्टम विच टारगेट्स द अमेरिकन मेनलैंड। तो अगर आपका बुनियादी सवाल ये है कि क्या परमाणु क्षेत्र में हमें बहुत और कुछ करना है, बिल्कुल बहुत कुछ, बिकॉज द न्यूक्लियर डायमेंशन इज बिकमिंग स्ट्रांग। आप देखिए यूक्रेन में प्यूटिन ने कितनी बार न्यूक्लियर रैटल उसको दबाया। आपने अगर बीजिंग की परेड देखी होगी 4-5-6 महीने पहले, सो दे शोकेस द न्यूक्लियर ट्रायड। तो दैट इज वन एरिया वेयर वी नीड टू डू अ लॉट। बट जहां तक ये रक्षा बजट का सवाल है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं।
आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो कितने वर्ष या कितने दशक अभी लगने वाले हैं भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होने में डिफेंस सेक्टर में?
देखिए, आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी चुनौती है। आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर्स। सो कहीं मैं पढ़ रहा था कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चिप फ्रॉम सैंड टू फिनिश प्रोडक्ट गोज थ्रू 64 countries। आपको ये देखना है कि इस चेन में वो कौन सी कड़ी है वेर यू कैन मास्टर इट एंड बिकम वैल्यू एड। और अगर उस कड़ी पे मेरी मास्टरी है, फिर मैं आपसे नेगोशिएशन करूंगा कि मैं ये करूंगा, आप मेरे को ये दें। और सेमीकंडक्टर्स टुडे, ड्रोन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, सब में लग रहे हैं सेमीकंडक्टर, और ये तो सिर्फ एक क्षेत्र है। तो बहुत विशाल चुनौती, आप देखिए ड्रोन्स के, बट हमने कदम तो उठाए हैं और कोई चारा भी नहीं है, तो हमें करना है। रियलिस्टिकली एक लंबी रेस है। देखिए मैं आपको बताऊं चुनौतियां क्या हैं। अभी 10 साल हो गए हैं हमको ये ड्रोन्स की जो कंपनीज हैं डिफेंस में, मैंने सुना उसमें 12 कंपोनेंट हैं, अभी भी हम 10 इम्पोर्ट करते हैं। दिस इज द चैलेंज ऑफ आत्मनिर्भरता। जब तक हमारा जो सिविल क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो शक्तिशाली नहीं बढ़ेगा, उसमें पैनापन नहीं आएगा, तब तक रक्षा क्षेत्र में भी नहीं है। सो इट्स अ बिग चैलेंज, बड़ी चुनौती है, पर हमने अभी कदम उठाए हैं। और प्रतिभा की कमी नहीं है भारत में, देयर इज टैलेंट। अगर हमने थोड़ा ये जो नियमावली जिसे आप कह रहे थे ना, रेगुलेशन रिजीम, इसको अगर हमने कम की, टैलेंट को और बढ़ावा दिया, तो डेफिनेटली होगा, स्पेशली इन नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ के जो तकनीकीकरण है वो बहुत ही उच्च दर्जे का है।
इस देश में हर गली मोहल्ले में क्रिकेट को लेकर चर्चा होती है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उस पर भी चर्चाएं होने लगी हैं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप किस तरह से देखते हैं आज आधुनिक विश्व की चुनौतियों को, जब कई देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं?
तो क्रिकेट कम हो रहा है, युद्ध ज्यादा हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने ये कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, की बात यह है घूम फिर के चर्चाएं होती हैं अर्थव्यवस्था पर। मेरा अब मानना है इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड। आप देखिए किस तरह भू राजनीति में स्विवल हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ। आप युद्ध देख लें, वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, यूक्रेन। यूरोप कहता था कि तो जो लड़ाई है ये सब एशिया में होती है, अफ्रीका में हम नहीं लड़ते हैं, हम तो संपन्न हैं। क्या हाल हुआ ताइवान में, आप देख लें क्या हुआ, गलवान, डोकलम। तो हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं भू राजनीति में जहां युद्ध की संभावना बढ़ रही है, एंड देयरफॉर द ओनली वे टू बी सिक्योर इज बाय इन्वेस्टिंग इन डेटरेंस, निवारण। अगर आप निवारण पे खर्च करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। अगर आप इस उम्मीद पे जिएंगे कि साहब युद्ध ना हो, युद्ध जरूर होगा। सो वंस अगेन द आर्ग्यूमेंट इज डेटरेंस, स्ट्रेंथन योर सेल्फ सो दैट नोबडी डेयर्स टू लुक एट यू। लोग कहते हैं साहब डेटरेंस इज कॉस्टली, मैं कहता हूं वॉर्स आर कॉस्टलियर, आस्क द यूक्रेनियंस।
तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बता रहे थे कि किस तरह भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, रक्षा बजट में किस तरीके की बढ़ोतरी की गई है, और कहते हैं कि समय के साथ जो नहीं बदलता है समय उसका साथ छोड़ देता है। भारत समय के साथ आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है। आकाशवाणी में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आवंटन पर चर्चा। भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में